समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे खास जानकारी और खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनीता आनंद।
Hello and good afternoon. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. For all of you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsule, tributes and much more. All this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Riyadh, Saudi Arabia on a two-day visit to take part in the first India-Gulf Cooperation Council Foreign Ministers Meeting.
भारत ने चार अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी और चाड में लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी।
टीएमसी एमपी जवाहर सरकार डिसाइड्स टू रिजाइन फ्रॉम राज्यसभा एंड पॉलिटिक्स, एक्सप्रेसिंग एंग्विश ओवर द प्रेजेंट सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल।
मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की।
And in men's hockey Asian Championship 2024, it is underway in China today. And time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today we will talk about the International Literacy Day. Literacy is a fundamental human right for all. Sarfirozi, we all know it opens the doors to the enjoyment of our other human rights, greater freedoms and global citizenship. Literacy is a foundation for people to acquire broader knowledge, skills, values, attitudes and behaviours to foster a culture of lasting peace based on respect for equality and non-discrimination, the rule of law, solidarity, justice, diversity and tolerance, and also to build harmonious relations with oneself, other people, and also the planet. The International Literacy Day is celebrated every year on 8th of September to raise awareness about the importance of literacy as a matter of dignity and human rights. Sarfirozi, literacy is not just the ability, we all know, to read and write. It is also the foundation of lifelong learning. And in 2024, as we move deeper into the digital era, the definition of literacy has also evolved to include digital literacy, ensuring individuals can effectively access and communicate information in an increasingly technological world.
और अनिता, यहाँ पर हमें ये मेंशन करने की जरूरत है कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको डिजिटल एक्सेस मिल गया है
जी।
हमें ये भी समझने की जरूरत है, हमें फैक्चुअली ठीक करेक्ट रहना है कि जो डिजिटल एक्सेस के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक उसमें सच्चाई है।
एब्सोल्युटली।
और अभी हमने बात करी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे की क्या थीम है, किस तरह से इसे मनाया जा रहा है। अब इसकी हिस्ट्री को भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी शुरूआत कैसे हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने साल 1966 में की थी, जिसका मकसद था इस बात को हाईलाइट करना कि एक इंसान जिस समाज में रहता है उसका साक्षर होना कितना जरूरी है। इसके अलावा ये दिन इस बात को भी दिखाता है कि दुनिया भर में लोगों को साक्षर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, और इस बात की भी याद दिलाता है कि दुनिया के अभी कई हिस्से ऐसे हैं जहां के लोगों को पूरी तरह साक्षर बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है।
And celebrity this year, the ILD is being celebrated under the theme of promoting multilingual education, literacy for mutual understanding and peace.
और अनिता, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में आपसी भाईचारा रहे, हम अंडरस्टैंडिंग रखें आपस में, हम आपस में शांति से मिलकर रहें, तो इसके लिए साक्षरता बहुत जरूरी है। यानी कि हमारे अंदर पढ़ने लिखने और एक दूसरे की बात को समझने की क्षमता हो। और आज की जो ये दुनिया है इसमें लोगों के लिए एक से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करना बहुत आम बात है। एक भाषा ऐसी होती है जो हम अपने घरों में बोलते हैं, जैसे कि मैं घर में हिंदी या उर्दू भाषा का प्रयोग करती हूं, उसी तरह आप किसी रीजनल लैंग्वेज का यूज करती होंगी। फिर एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो हम अपने वर्क प्लेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लोग अक्सर अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं अपने या अंग्रेजी। पर ग्लोबलाइजेशन के कारण अब दुनिया भर की कंपनियां अलग अलग देशों में अपनी पहुंच बना रही हैं, और ऐसे में अगर किसी को किसी विदेश की कंपनी में नौकरी मिली है तो बहुत हद तक हो सकता है कि उन्हें वहां की स्थानीय भाषा सीखनी पड़े। और अगर हम लिटरेसी के मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी अप्रोच को अपनाते हैं तो इससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है, हम नई चीजें सीखते हैं। और अनीता, कई रिसर्च ये भी कहती हैं कि नई भाषाएं सीखने से हमारी मेमोरी तेज होती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, और इसके अलावा किसी देश की लोकल भाषा सीखने से हमें वहां की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है और हमारे पास नौकरी के नए अवसर भी खुलते हैं।
एब्सोल्युटली, एंड द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड एविडेंस्ड बाय रिसर्च। व्हेन चिल्ड्रन आर ऑफर्ड एजुकेशन इन देयर हाउस होल्ड लैंग्वेज लाइक यू सेड हिंदी और इंग्लिश, मोर ऑफ देम अटेंड स्कूल, गर्ल्स फ्रॉम रूरल एरिया स्टे इन एजुकेशन लॉन्गर, एंड ऑल चिल्ड्रन एक्वायर बेटर थिंकिंग स्किल्स। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ऑल्सो सपोर्ट्स इंटर कल्चरल डायलॉग, सोशल कोहिशन एंड पीस, फॉर लैंग्वेज इज अ पासपोर्ट टू कम्युनिकेशन विद अदर्स एंड इट कनेक्ट्स अस अक्रॉस कल्चर्स। It opens us to new ways of perceiving and interpreting the world. It strengthens understanding within and, of course, between peoples.
इस साल विश्व साक्षरता दिवस की थीम है बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। तो अनीता, जैसे कि थीम से समझ आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 में खासतौर पर बहुभाषी शिक्षा को अहमियत दी गई है, यानी कि दुनिया में शांति बनाए रखने में मल्टीलिंगुअल लर्निंग कैसे मदद कर सकती है, कैसे हम इसकी मदद से दुनिया भर में एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और अनीता, भारत में जैसी कि एक कहावत बहुत प्रचलित है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी जो दुनिया है ये एक परिवार है। और हम अगर इसे इस तरह देखें तो पूरी दुनिया वाकई एक छोटे से गांव में ही बदलती जा रही है, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे से काफी हद तक कनेक्टेड रहते हैं। और ऐसे में बहुभाषा यानी कि एक से ज्यादा भाषा बोलने की क्षमता को एक एसेट की तरह देखा जा रहा है।
And Syed Firozi, Vice President Jagdeep Dhankar today highlighted that the National Education Policy is a game changer and allows youth to fully explore their talent and energy. Mr. Dhankar was the chief guest at an event on the occasion of International Literacy Day in Delhi. Speaking on the occasion, the Vice President pointed out that India is a unique nation when it comes to the richness of languages, and he emphasized that the National Education Policy has laid emphasis on the importance of mother tongue.
We had a national education policy and that laid great emphasis on mother tongue. From this platform, I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages.
श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि साक्षरता से उदारता आती है और निर्भरता कम होती है। उन्होंने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सेवा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री धनखड़ ने कहा कि सड़क संपर्क, स्कूल, बिजली, शौचालय और इंटरनेट सेवा के गांव तक पहुंचने से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। और अनीता, अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जान लेते हैं कि उनके पास आज क्या खास है।
जी, टू जनरेट अवेयरनेस एंड फाइट अगेंस्ट द चैलेंजेस ऑफ द ट्रांसप्लांट सर्जरीज इन द कंट्री, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स ISTS इज होस्टिंग अ टू डे कॉन्फ्रेंस एट एम्स न्यू दिल्ली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस विच इज कंक्लूडिंग टुडे इज टू फॉस्टर participation among transplant surgeons across different specialties and to address the shortage of trained professionals in the field. We have a special report from our correspondent.
The ISTS is looking to integrate general surgeons into transplant surgery roles and provide comprehensive training to them. These roles will range from organ retrieval to transplantation, allowing them to continue their primary specialties. The society is also looking to aid government agencies in understanding and adapting to changes in the surgical field and formulating relevant policies. The conference is aiming to develop a network or grid connecting various state organ and tissue transplant organizations, medical colleges and trauma centers to streamline surgeon training and organ retrieval processes. Talking to the media, AIIMS Department of Surgery Professor V.K. Bansal said that ISTS is looking to increase the number of transplants in government hospitals and availability of trained doctors for operations.
This society ka main purpose hai ki hum India mein aur transplant surgeons kaise train kare, transplant ka program aur aage kaise badhaya jaye. Jaise Dr. Paul ne bataya ki hum 60 medical colleges ko transplant karne ke liye infrastructure ke liye support karenge, budget support karegi government of India. To वही इस सोसाइटी का मेन पर्पज है कि गवर्नमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. बेसिकली इट शुड बी नॉट अ टाइम बेस्ड प्रोग्राम, इट शुड बी अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम. क्योंकि हमें दो तरह के सर्जन चाहिए. एक तो ऐसे ट्रांसप्लांट सर्जन चाहिए जो फील्ड में जाके काम करेंगे, जो मेडिकल कॉलेज में जाकर ट्रांसप्लांट करेंगे. दूसरा कुछ सेंटर्स हमें ट्रेनिंग के लिए, एक्सेलेंस के लिए भी चाहिए, रिसर्च के लिए भी चाहिए.
थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस ISTS इज होपिंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट कैन एड्रेस द अर्जेंट नीड फॉर स्किल्ड ट्रांसप्लांट सर्जन्स in the country. Sumit Saha for Parikrama.
And now we go over to Nagaland, where the state will get its first Nagamandi at Sathekima A in Chumukedima district, aiming at enhancing agricultural trade and bolstering the agrarian economy of the state. The Nagamandi will serve as a vital hub for wholesale purchase and sale of various agricultural commodities produced in the region. Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Ramdas Athavale, laid a foundation stone for Nagamandi project in the presence of Chief Minister of Nagaland, Nephew Ryu. A report.
Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Ramdas Athavale, who was on a two-day visit to Nagaland, laid a foundation stone for Nagamandi project at Sathekima A under Chumukedima district in the presence of Chief Minister Nephew Ryu. The Nagamandi is an agricultural initiative of Rural Agro Farms Limited Liability Partnership in collaboration with the Department of Agriculture. RAF LLP has received a government permit to develop and operate a comprehensive agricultural mandi in Nagaland under the Build, Operate, Maintain Public-Private Partnership model. The facility covering 10 acres will include designated area for grain and vegetable market, aim at enhancing agricultural trade, providing modern amenities and boosting the state's agrarian economy. Key feature of Nagamandi include a fair and transparent marketplace for farmers to sell produce at competitive price, improve market access and reduce post-harvest losses through efficient procurement, storage and distribution and infrastructure supporting economic growth in Nagaland, contributing to the state GDP. The mandi will feature 110 retail outlets for traders, 10 warehouses with a total capacity of 400 metric tons, 2 auction yards for transparent trading, 2 cold storage units with a capacity of 500 metric tons each, and Kisan Bhavan with both air conditioned. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
राजस्थान में जोधपुर की केंद्रीय जेल में बंद कैदियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस जेल में बंद कैदियों में से चुनिंदा कैदियों को खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
जेल में सजा पूरी करने के बाद कैदियों का जीवन बेहतर हो और वे आत्मनिर्भर होकर सही जीवन यापन कर सकें, इस मकसद से कैदियों को पाककला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पहले चरण में 120 बंदियों को पाककला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इनमें 30 महिला, 45 विचाराधीन और 45 सजायाफ्ता बंदी शामिल हैं. इन कैदियों को चाइनीज, साउथ इंडियन और विशेष पकवान बनाना सिखाया जा रहा है. जोधपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि इस प्रशिक्षण से बाहर निकलने के बाद कैदियों को पुनर्वास में विशेष मदद मिलेगी. जेल में सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने और हुनर सीखने से निश्चित ही ये कैदी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे. परिक्रमा के लिए जोधपुर से गोविंद गोड़ के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट.
Going back to the northeastern region, a two-day event titled Promotion of Millets Production in India was organized by the Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation, NERAMAC, a central public sector enterprise under the Ministry of Development of Northeastern Region, Doner, Government of India began in Meghalaya, Rongali Bihu Auditorium, Shillong. We have a report from our correspondent.
The event aimed at generating awareness and promote benefits of millet consumption to create an upstream effect of increased production by farmers. B.K. Sohilia, advisor cum chairman, Meghalaya Farmers Empowerment Commission, while addressing the farmers and stakeholders, emphasized the need for extensive awareness generation on the importance of millet production. Retired Commodore Rajiv Ashok, Managing Director, NERAMAC, highlighted the benefits of millet products. M. Iwayama Metei, Horticulture Advisor, NEC, commended the effort of being taken by NERAMAC in the agri-horti sector in general and for promotion of millets in specific. J.C. Lingdo, Director of Agriculture, Government of Meghalaya, said that the area under millet cultivation, though limited, has increased in recent year. Notable highlights of the event included ready-to-eat products like millet malt, cookies, laddus, millet rusk, ragi, namkeen cakes, wine. The event witnessed participation of around 200 beneficiaries, including millet farmers and entrepreneurs from Meghalaya, Assam and Arunachal Pradesh. The event is supported by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. From Akashwani Shillong, Paritosh Dikshit.
मणिपुर में एक खास मिर्ची उगाई जा रही है जिसका नाम सिरारा खूंग मिर्ची है। ये केवल उखरूल जिले में ही उगाई जाती है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
Sirarakhung chili, also known locally as Sirarakhung hatai, is grown only at Sirarakhung village of Ukhrul district of Manipur, which is around 67 kilometers far away from capital city Imphal. This unique chili has a distinctive taste and moderate heat. Around 300 households are mostly chili cultivators. The villagers said that there is a legend on how Sirarakhung chili or Sirarakhung hatai is only found and grown in their village, and said that the chili plant is a gift from the god. Agro scientists commented that the Sirarakhung village is suitable in terms of its altitude and climatic conditions for Sirarakhung chili. These chili products are now available across the world, including online markets. To promote this chili, Sirarakhung Hathai Festival is organized at Sirarakhung village. This year, two-day Sirarakhung Hathai Festival was held in the village in last month. Speaking to Akashvani News Parikrama, the festival organizing committee said that around 30 tons of Sirarakhung chili is produced annually from last few years.
I am Ezra Zimik, Sagedri of Sirarakhung Hathai Promotion Committee. Over the years, the Sirarakhung Hathai Panit has gained popularity in Manipur and beyond. This year, around 2,310 cages were sold, generating a revenue of ₹2,31,000. With the success of this year's Panit, the villagers reaffirmed to protect and preserve the indigenous crop and scale up the production through sustainable farming.
These chilies grown in the adjoining villages have lesser quality in terms of taste, flavor and color. JJ Thoksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
INAFOS, the headquarters of Integrated Defence Staff, HQIDS, is organizing a combined operational review and evaluation CORE program for senior officers of tri-services at USI New Delhi from 9th to 13th of September 2024. More from our broadcasting officer Anand Saurabh from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defence.
The five-day development cum orientation program has been designed for Major General and equivalent officers from the three services, along with the officers of various ministries like Ministry of Defence, Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs. The combined operational review and orientation program, also known as CORE program, has been conceptualized to prepare senior officers of the Indian Armed Forces for future leadership roles. This will be done by developing skills in strategic planning, duly anticipating and preparing for future threats, challenges and conflicts. The effective conduct of future wars will hinge on three vital elements. They are military leaders, combatants, which includes man-machine interface, and support staff. The Indian Armed Forces are taking dynamic steps towards modernization both in concepts and inventory. It is therefore imperative for future senior military leaders to stay abreast with changing geopolitical dynamics and futuristic combat scenarios augmented by disruptive technologies and advancements to take comprehensive decisions. The core program aims to foster jointness and integration and enhance cooperation and coordination among different services to create a detailed understanding of the operational environment. The program will comprise panel discussions and lectures by a total of 30 eminent speakers and subject matter experts from varied fields. Changing nature of warfare, globalization, and interconnectedness, lessons from recent ongoing conflicts in the world, impact of non-kinetic warfare, cyber information warfare, and adoption of AI or artificial intelligence and autonomous systems in military are some of the topics that will be discussed. This is Anand Saurav from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
India's glorious fight for freedom is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. Brings you a glimpse of the valiant struggle every day.
On this very day in 1897, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was charged for sedition for his criticism of the British rule in his Marathi newspaper named Kesari.
This was an important moment in India's political history, as it marked the criminalization of dissent as a grand spectacle of a political trial.
Tilak was charged for the publication of two texts, Shivaji's Utterances, a poem, and an unsigned report on the June 1897 Shivaji festival, at which Tilak spoke.
In 1897, Chapekar brothers shot dead two British officers, namely the collector of Pune, Mr. Rand, who was responsible for the plague measures, and a young military officer.
This incident caused intense indignation among the Europeans and in the British government of India. It was pointed out that the murders of the two officers were the direct result of the incitement caused by Tilak's speeches and articles.
Due to prosecution's narrow legal interpretation, the texts were reduced to mean incitement of feelings of disaffection.
After 6 days of litigation, the jury announced Tilak guilty, and Tilak was sentenced to 18 months of imprisonment.
Incidentally, Tilak was imprisoned thrice under the sedition law by the British.
When the nationalists were waging a war against the colonial rulers, spiritualists lifted the morale of Indians and told the Western world about the greatest philosophy of Hinduism, thus garnering the support of the world for India's freedom.
One such spiritualist, Swami Abhidananda, was born on this date in the year 1866. He was a direct disciple of Swami Ramakrishna Paramhans. Swami Vivekananda sent Swami Abhidananda to the USA.
He went to the USA in 1897 as the head of the Vedanta Society of New York and preached messages of Vedanta and teachings of his guru. For about 25 years, he traveled far and wide to the United States, Canada, Mexico, Japan, and Hong Kong. After attending the Pan-Pacific Education Conference at Honolulu, he returned to India in 1922.
He also crossed the Himalayas on foot and reached Tibet, where he studied Tibetan Buddhism. He left for his heavenly abode on the 8th of September 1939, but his spiritual teachings continue to guide people on their spiritual journey.
Today is the death anniversary of Firoz Gandhi, who was a freedom fighter, journalist, and a parliamentarian. Firoz, who was born on 12th of September 1912 in a Parsi family, quit studies to take part in India's freedom struggle.
He was imprisoned in 1930 along with Lal Bahadur Shastri and was lodged in the Faizabad jail for 19 months. Soon after his release, he was imprisoned twice 1932 and in 1933.
Firoz Gandhi married Indira Gandhi in 1942. The couple were arrested and jailed in August 1942 during the Quit India movement, less than 6 months after their marriage.
Even after being allowed to report on the parliamentary proceedings and against the publication of any such proceedings, having started his career as a scribe, Firoz understood the importance of freedom of the press.
It is because of a private member's bill introduced by Firoz in 1956, it is possible for media to report parliament proceedings. Firoz died in 1960 in Delhi.
And in sports, in the Asia Cup hockey, the match is underway between India and the host China at Holon Buir. Defending champions India were leading 3-0 in their opening match when the reports last came in. India will be looking to win their record extending fifth title this year after clinching bronze at the Paris Olympics last month.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. अनीता, सबसे पहले किसे याद कर रहे हैं?
Today is the birth anniversary of Bhupen Hazarika, the Indian playback singer, lyricist, musician, poet, actor, artist, editor, filmmaker, the multifaceted professor and politician from Assam, widely known as Sudha Konto, meaning Kaku, literally nectar-throated. His songs were written and sung mainly in the Assamese language by himself and are marked by the humanity and universal brotherhood and have been translated and sung in many languages, most notably in Bengali and Hindi.
और हिंदी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने स्वीकृति, एक पल, सिराज, प्रतिमूर्ति जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा. आपको सुनाने जा रही हैं उनका गाया ये गीत.
दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी
Bhupen Hazarika received the National Film Award for Best Music Direction in 1975, Desiki the Natak Academy Award in 1987, Padma Shri in 1977, Padma Bhushan in 2001, Dada Saheb Phalke Award in 1992, the highest award for cinema in India, and Sangeet Natak Academy Fellowship in 2008, and the highest award of Sangeet Natak Academy also. He was posthumously awarded both the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, in 2012, and the Bharat Ratna, India's highest civilian award, in the year 2019. And today is also the birthday of the Indian singer Asha Bhonsle. We've all been listening to her songs on various channels since morning.
Mm-hmm.
She's the playback singer and entrepreneur, actress, television personality who dominantly works in Indian cinema. Also known for her versatility, she has been described in the media as one of the greatest and most influential singers in Hindi cinema.
मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर सब प्यार के पहले नजर है ले गई ले गई दिल ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई ले गई मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए महताब दर महताब.
आशा भोसले को गायकी में योगदान के लिए पद्म विभूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे सम्मानों से नवाजा गया. आज ही जयंती है राधा कृष्ण की. ये हिंदी के कहानीकार थे. इन्होंने कई उपन्यास लिखे, संस्मरण लिखे, हास्य व्यंग्य जैसी रचनाएं की. इनकी मुख्य रचनाएं रामलीला, सजला, गेंद और गोल, गल्पिका आदि हैं. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अनीता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।